Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Jaya Radha Madhava.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
इस डिवाइन वेज एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बिबिलिटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंच तत्व की श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की निताय गौड़ प्रेमानंदे ऑल ग्रेस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्रेस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्रेस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्रेस टू श्री गुरु एंड गौरांग सब मेरे पीछे दोहराए हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
तो आज बहुत विशेष पर्व है और दिन भी है तो विशेष तिथि ये है श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव है और इस ग्रेट सुंदर कृष्ण प्रभु के यहाँ के जो डीटीज हैं श्री श्री गौर नेताए उनका भी आविर्भाव तिथि है तो श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है तीसरे स्कंद में वर्णन आता है आध्यात्मिक जगत का जिसमें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ का नेचर है अखंडित उत्सव स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है कि जहां सदैव उत्सव होते रहते हैं और वो सारे उत्सव किससे संबंधित हैं भगवान कृष्ण से तो इसी प्रकार से वही आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत में आता है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में तो उनमें से एक है दक्षिण भारत में श्रीरंगम तो श्रीरंगम इस ब्रह्मांड के सर्वप्रथम विग्रह कोई है सर्वप्रथम कोई डीटीज हुए हैं तो वह रंगनाथ जी हैं और विग्रह की जो उपासना है विग्रह की जो सेवा अर्चना है सर्वोत्कृष्ट विधि से वो रंगनाथ की जाती है श्रीरंगम में और बाकी सब स्थानों में हम इतने उत्सव अनुभव नहीं करते जितने उत्सव श्रीपद रामानुजाचार्य ने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने श्री विग्रह की सेवा के लिए श्रीरंगम में आप जाते हैं तो 365 दिनों में से 340 या 45 दिन केवल उत्सव होते हैं और भगवान के जो विग्रह हैं वो रोज शाम के समय दिन के कई दिन में दो या तीन बार बाहर निकलते हैं और पालकी में निकलते हैं सारे जो वैष्णवगण हैं उनकी स्तुति या स्तोत्र आदि का गान करते हैं और भगवान अपने भक्तों के संग में विशेष आनंद अनुभव करते हैं तो ये सारे देन वास्तव में श्रीपद रामानुजाचार्य की हैं क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये जगत में तीर्थ है या धाम है उनकी महिमा तब तक है जब तक उस स्थानों में भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध भक्त निवास करते हैं या भगवत सेवा को कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य का आज आविर्भाव था तो मैंने सोचा कि उनका गुणगान किया जाए क्योंकि इस जगत में सबसे कठिन चीज क्या है, किसी वैष्णव का गुणगान करना। भौतिक जगत में हम तो एक्सपर्ट हैं, बचपन से कितने वस्तुओं का, स्थानों का, व्यक्तियों का ग्लोरिफिकेशन हम गाते हुए आए हैं, लेकिन कभी भी उस गुणगान करने से हमें कभी संतुष्टि या आनंद की अनुभूति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने जो परम भगवान, जो परम भगवान या उनके जो भक्त हैं, वो गुणगान करने योग्य है। उनके अलावा इस जगत में हर चीज का हमने गुणगान किया है, अपने बचपन में, अपने युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, हर मृत्यु के समय भी। तो ऐसे महान वैष्णवों का जब हम गुणगान करते हैं तो कृष्ण सर्वाधिक आनंद अनुभव करते हैं। भगवान को अपना गुणगान सुनने से भी अधिक आनंद अनुभव होता है जब कृष्ण देखते हैं कि उनके भक्त का गुणगान किया जा रहा है या उनके भक्त का गुण यश घुषुक त्रिभुवन, तीन भुवनों में फैल रहा है। तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य विशेष आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत अधिक प्रीति रखते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस कलियुगा में चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। इन संप्रदायों के जो प्रमुख आचार्य हैं, आगे चलकर विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये संस्थापक आचार्य बने एक प्रकार से। उन्होंने जो संप्रदाय की शिक्षाएं हैं उनको सम्मिलित रूप प्रदान करके प्रॉपरली उस संप्रदाय को स्थापित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने से पहले ही मध्वाचार्य को नवदीप में उन्होंने कहा था कि मैं आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा और आपके संप्रदाय के दो विशेष तत्वों को मैं स्वीकारूंगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने चारों संप्रदायों में से दो दो चीजों को स्वीकार किया। मध्वाचार्य के संप्रदाय से उन्होंने केवल अद्वैत निरासन, अद्वैतवाद का या मायावाद का पूर्ण रूपेण खंडन करना, और दूसरा श्री मूर्ति सेवन, भगवान के विग्रह की सेवा करना, ये किसने स्वीकार किया? चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के संप्रदाय से। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपद रामानुजाचार्य के संप्रदाय से दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को धारण किया है या ग्रहण किया है। और वो शिक्षाएं क्या है, वो दो तत्व कौन से हैं? चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को उन दो तत्वों के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे और जोर देते थे कि जो साधक है, भगवत भक्त है, भगवत भक्ति में अग्रसर होना चाहता है, उस व्यक्ति को यदि भगवत चरणों की प्राप्ति की अभिलाषा है तो उस व्यक्ति को ये दो चीजों को गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपद रामानुजाचार्य के संप्रदाय से दो वस्तुओं को स्वीकार किया और वो है, पहली है अनन्य भक्ति। अनन्य भावना से भगवत भक्ति या भगवत सेवा में आपने आपको मन, वाणी, शरीर आदि के साथ समर्पित करना, और दूसरा क्या है, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा, भक्तों की जो सेवा है वो करना। तो रामानुजाचार्य वास्तव में है कौन? श्रीपद रामानुजाचार्य का जब जन्म हुआ था, उनके जो पिता थे आसुरी केशवाचार्य और उनकी माता थी दीप्तिमती, जो श्री पेरुम्बुदूर चेन्नई के पास एक स्थान है, उसका पूर्व नाम भूतपुरी था, क्योंकि शिवजी ने अपने भूतों को भेजा था वहां तपस्या करने के लिए, भूतपुरी। तो वहां दीप्तिमती और इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने विशेष यज्ञ किया पार्थ सारथी के लिए चेन्नई में, और उनको कहा कि हमें तो आपके जैसा ही तेजवान पुत्र चाहिए। तो फिर भगवान पार्थ सारथी ने उनको ऐसा पुत्र दिया कि जिन्होंने स्त्री संप्रदाय की धरोहर को स्वीकारा और चारों दिशाओं में इस वैष्णव संप्रदाय को फैलाया। तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य की ये जो शिक्षा है, विशेष रूप से भक्त जन सेवा, इसको महाप्रभु ने बहुत स्ट्रांगली पकड़ा है। और जो अनन्य भाव है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, रूप गोस्वामी ने उसी चीज को कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो चैतन्य महाप्रभु ने वैसे देखा जाए हमारे संप्रदाय के जो आचार्य है वो स्त्री संप्रदाय की शिक्षा से बहुत अधिक प्रीति रखते थे, फॉन्ड क्या कहते हैं या फैन हो गए थे। इवन हम जो दीक्षा प्रोसेस अपनाते हैं जो प्रथम दीक्षा सेरेमनीज है ये विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत महाराज श्रीरंगम में गए और उन्होंने वहां दीक्षा प्रोसेस सीखा और वहां आकर अपने संप्रदाय में लागू किया। तो ऐसी कई चीजें हैं और भक्ति विनोद ठाकुर इस संप्रदाय के आचार्य थे यमुनाचार्य, उनसे बहुत अधिक प्रीति रखते थे। यमुनाचार्य रामानुजाचार्य से पहले उनके रामानुजाचार्य के पहले ये आचार्य थे यमुनाचार्य इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। तो यमुनाचार्य ने जाना था कि ये जो श्रीपद रामानुजाचार्य है जो कांचीपुरम में निवास करते हैं उनको श्रीरंग में आना चाहिए और इस संप्रदाय को लीड करना चाहिए क्योंकि यही एकमेव वैष्णव है जो इस संप्रदाय को स्थापित कर सकते हैं, पूर्ववर्त लीड कर सकते हैं। तो यमुनाचार्य ने एक स्तोत्र लिखा उनको आकृष्ट करने के लिए, स्तोत्र रत्न, और वो स्तोत्र रत्न लिखकर उन्होंने अपने शिष्य महापूर्ण को भेजा, कहा कांचीपुरम में, और कहा कि आप जाओ और वरदराज भगवान की प्रीति हेतु उनके सामने स्तुति करो और इस स्तोत्र को यदि रामानुजा सुनेगा तो वो आकृष्ट रहे बिना नहीं रह सकता। तो महापूर्ण जाते हैं क्योंकि रामानुजाचार्य बहुत सरल वृत्ति के वैष्णव थे और उनका अनुराग बचपन से ही वैष्णवों की सेवा के लिए बहुत अधिक था और उनके जीवन में कोई सबसे पहले वैष्णव आए तो वो थे कांचीपूर्ण जो एक शूद्र थे लेकिन भगवत भगवान के महान सेवक थे कांचीपूर्ण। तो ऐसे कांचीपूर्ण की शरणागति लेकर कांचीपूर्ण के चरण आदि की सेवा करते हुए रामानुजाचार्य ने पूछा कि मैं तो अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, आप मुझे भगवत सेवा में नियुक्त कीजिए। तो कांचीपूर्ण ने कहा मैं तो एक शूद्र हूं, पामर हूं, नीच हूं, मेरे पास क्या अधिकार है, तुम तो ब्राह्मण हो, विद्वान हो, तुम्हें कैसे मैं सेवा में लगा सकता हूं। तो रामानुजाचार्य ने कहा नहीं नहीं, भगवत सेवा के बिना सारी योग्यताएं विफल है। तो उन्होंने कहा कि आप सेवा करना चाहते हो तो वरद राज की सेवा करो, उनके लिए जल लाने की सेवा करो, पानी लाने की बस। तो रामानुजाचार्य इतने बड़े आचार्य इतनी सिंपल सेवा को स्वीकार करते हैं कांचीपूर्ण की आज्ञा से और कई साल तक 2.5 या 3 किलोमीटर दूरी पर कांचीपुरम से एक कुआं है वहां से वो लाया करते थे मटके भर भर के वरदराज की सेवा के लिए। तो ऐसे रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण या अनंत शेष से अभिन्न है, हमने सुबह भी उनका चर्चा किया था और इस पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से रामानुजाचार्य का नाम शैलपूर्ण ने रखा राम अनुज, अनुज का मतलब है छोटे, राम के छोटे या लक्ष्मण। तो रामानुजाचार्य लक्ष्मण से अभिन्न है और रामानुजाचार्य विशेष रूप से भगवान की एक विशिष्ट शक्ति के अवतार है क्योंकि भगवत सेवा कोई करने का सामर्थ्य रखता है तो वो केवल अनंत शेष है और अनंत शेष भगवान की सेवा करते हैं दो प्रकार से। एक तो सेवा करने का प्रकार क्या है, भगवान के लिए वो बेड बने हुए हैं अनंत शाही शेषशाही, और दूसरा क्या है अम्ब्रेला। तो ये प्रमुख सेवा अनंत शेष भगवत सेवा के लिए करते हैं और निरंतर लगे रहते हैं क्योंकि अनंत शेष का दूसरा शक्ति क्या है, धारण शक्ति, जो सारे लोगों को अपने हुड्स आदि में धारण करते हैं। और उनकी और एक शक्ति है अनंत शेष की, वो है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति क्योंकि भगवान जब सोते हैं सोने से पूर्व कृष्ण आनंदित होते हैं जब कोई उनका ग्लोरिफिकेशन करता है, कोई उनका गुणगान करता है, उनके लिए गाता है। और भगवान सुबह उठने से पहले उठते समय उनके लिए कोई व्यक्ति गान करता है गीतों का स्तोत्रों का सॉन्ग्स का तो कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं। तो ये जो शक्ति है ये जो सेवा है ये किसके पास है, अनंत शेष के पास, जो अनंत मुखों से अनंत सालों से केवल कृष्ण का गुणगान करते आए हैं। तो ऐसे शेष का जो ये शक्ति है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति, इस कृष्ण कथा वर्णन शक्ति का जो शक्ताविश अवतार है वो कौन है, श्रीपद रामानुजाचार्य. रामानुजाचार्य इज पावरफुल पर्सनैलिटी. किसके लिए? कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणगान करने के लिए. और वही उनका सामर्थ्य था. और ऐसे रामानुजाचार्य आगे चलकर उन्होंने अपने संप्रदाय में इन इन दो तत्वों को स्वीकारा है. एक है अनन्य भाव से भगवत भजन और दूसरा है वैष्णव सेवा. तो क्योंकि वैष्णव सेवा हमारे संप्रदाय में एक प्रमुख रूप है. नरोत्तम दास ठाकुर आधारी आचार्य इस पर जोर जोर देकर चिल्लाते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा. वैष्णव या भक्तों की सेवा किए बिना किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से पार हो सकता है. इसी चीज को नर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल. भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल. जो भक्ति लता का जो वृक्ष है, लता है, उसका मूल यही है. क्योंकि भगवत भक्ति का जन्म होता है भक्ति जन्म मूल है या साधु संग. भगवत भक्ति का जन्म केवल भक्तों के संग में होता है. और ये जो भक्ति लता है इसका मूल भगवत सेवा या भक्त सेवा है. चैतन्य महाप्रभु ने उसी चीज को कहा, गोपीर भरतुर पद कमल और दास दासानुदास. तो मतलब इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रामानुजाचार्य की शिक्षाओं का तालमेल है. और उस शिक्षाओं को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अधिक जोर दिया है. श्रीमद् भागवत में भी कई श्लोकों में वर्णन आता है. और राजा कुलशेखर एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं मुकुटमाला स्तोत्र में. वो कहते हैं, मत जन्मना फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्वृत्त्य वृत्त्य परिचारक वृत्त्य वृत्त्य वृत्त्यश वृत्त्य इति मां स्मर लोकनाथ. तो ये जो राजा कुलशेखर है, भक्त की सेवा या भगवान के भक्तों के दास की जो भावना है उसको प्रकट करते हुए है, वो भगवान से एक चीज कहते हैं. और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण को कहते हैं मत जन्म फलमिदं, मेरे जीवन में एक ही फल हो सकता है. कहते मधु कैटव हारे, हे मधु और कैटव राक्षस के हंता या मधु कैटव राक्षस को मारने वाले, मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव, मेरी एक ही प्रार्थना है और आप मेरे ऊपर एक ही अनुग्रह कीजिए, एक ही अनुकंपा और कृपा कीजिए. वो क्या है? त्वत भृत्य भृत्य परिचारक चारक भृत्य भृत्य भृत्यश भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ. हे लोकनाथ कृष्ण, आप मुझे थोड़ा याद रखो. लेकिन कैसे याद रखो? आपके भृत्य के भृत्य के सात बार उन्होंने श्रवण शब्द यूज किया है. चैतन्य महाप्रभु ने दास दास अनुदास शायद तीन बार. तो इस प्रकार से एक जो उन्नत भक्त है, ये राजा कुलशेखर 12 अलवरों में से एक अलवर थे, जो दक्षिण भारत के प्रमुख डिवोटीज हैं. जब कलयुग के शुरुआत में भगवान के जो अलग अलग आश्रय हैं, श्री वत्स चिन्ह है, सारंग जो धनुष है, तलवार है, भगवान की गदा है, चक्र है, लोटस है, शंख है, इन सब ने अवतार धारण कर लिया 12 डिवोटीज के रूप में. और ये 12 में से ये शायद कुलशेखर अलवर श्रीवत्स चिन्ह के इनकार्नेशन है. तो ऐसे राजा कुलशेखर इस चीज को कह रहे हैं कि वास्तव में यदि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहता है, तीव्र अनुग्रह चाहता है भगवान का, तो उसको क्या करना होगा? यश प्रसादात भगवत प्रसाद. इसलिए रोज हमें सुबह उठते गवाया जाता है दो चीजें कि ये भौतिक जगत संसार दावानल है. ये याद सबसे पहले लाइन उठ के कुछ याद दिलाते हैं आचार्य गण, तो यही दिलाते हैं संसार दावाग्नि है. क्योंकि हम उठते हैं तो हमारी आंखें उठते ही भोग करने के साधनों को ढूंढते हैं और विचार करती है, योजनाएं बनाती है कि ये जो जगत है मेरे उपभोग आदि के लिए बना है. लेकिन आचार्य गण कहते नहीं नहीं, ये जो जगत है दावाग्नि के समान है और तुम जले बिना नहीं रह सकते. इसलिए सदैव क्या करो? ये अनुकंपा से जीवन यापन करो. यश प्रसादात भगवत प्रसाद. यश मीन्स आध्यात्मिक गुरु या जो वैष्णव गण है उनकी कृपा से ही मुझे भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की संपदा है, और उस संपदा को ग्रहण करने का कोई अधिकार या कोई योग्यता हमारे पास नहीं है। हम पामर जीव हैं, क्या योग्यता हम रखते हैं? कुछ भी नहीं, निकृष्ट है, नीच है। लेकिन वो क्वालिफिकेशन हमें प्राप्त हो सकता है यदि हम इस एक प्रिंसिपल को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य ने केवल इस शिक्षा को स्प्रेड नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में उन्होंने धारण किया है। हाँ, ये दासत्व की जो भावना है, और इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी उसी मूड को सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा भी नहीं लिया था। चैतन्य महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स के साथ गया जा रहे थे, तो जाते समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा मंदराचल, जहां मधुसूदन भगवान के विग्रह हैं, बहुत सुंदर, बिहार में। तो मंदराचल में उस एरिया में जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये समझ लिए कि उनके साथ जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो ब्राह्मणाज हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, उनके लैंग्वेज का उच्चारण कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान तो क्या है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय, भगवान तो अपने भक्तों से प्रीति रखते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित ने ये बहाना बनाया। निमाय पंडित ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मुझे बहुत बुखार हो गया है। तो स्टूडेंट्स ने कहा बताइए क्या चाहिए आपको मेडिसिन, मुझे तो एक ही मेडिसिन काम करती है, ब्राह्मणों के चरणों को धुला हुआ जल, ये मेरे लिए मेडिसिन है। तो ये गए उन ब्राह्मणों के पास, बड़े आदर सम्मान के साथ उनसे निवेदन किया, प्रणाम किया, उनके चरणों के जल को लिया और निमाय पंडित को लाके दिया। निमाय पंडित ने उसका पान किया, और इसके अलावा उन सारे स्टूडेंट्स ने भी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। और रामानुजाचार्य के जीवन में एक वर्णन आता है, एक विशेष लीला। जब रामानुजाचार्य के अंतिम कुछ समय थे, तो उस समय एक ब्राह्मण उनके पास आता है और वो कहता है, ओ श्रीपद रामानुजाचार्य, क्योंकि रामानुजाचार्य का एक नाम यतिराज था। यतिराज मीन्स सन्यासियों में किंग, सन्यासियों के वो मुकुटमणि थे, राजा थे सन्यासियों में। तो ऐसे यतिराज के पास जाकर वो ब्राह्मण कहता है कि हे यतिराज, मैं तो अपनी शुद्धि चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आपकी सेवा करके ही मैं बहुत तीव्रता से शुद्धि अनुभव करूंगा, और आपकी सेवा का इतना प्रभाव होगा कि माया के प्रभाव से या भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण है, इनके प्रभाव से मैं सरलता से मुक्त हो जाऊंगा। तो श्रीपद रामानुजाचार्य ने कहा ये करेक्ट है, हाँ सही है, तुमने सही बोला है। कोई भी व्यक्ति सेवा को स्वीकार करता है गंभीरता से, और सेवा से ही वो मुक्त होने का अधिकारी बनता है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, हाँ, तुम्हारा ये अंडरस्टैंडिंग बहुत पक्का है, करेक्ट है, लेकिन मेरे भी एक डिजायर है। श्रीपद रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा है मेरी सेवा करने की, तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा, और जो मैं कहूं वही तुम्हें करना होगा। तो ब्राह्मण तो बहुत आनंदित हो गया, उन्होंने कहा हे मास्टर, जो आपकी इच्छा है मैं वो करूंगा। हाँ, ब्राह्मण की तो इच्छा पूर्ति हो गई, क्योंकि रामानुजाचार्य की सेवा जो श्रीरंगम या श्रीरंगम के प्रमुख आचार्य थे, रामानुजाचार्य के पास कितने 7,000 या कितने ब्रह्मचारी होते थे उनके मठ में, हाँ कितने हजार सन्यासी थे, कितनी हजार फुल टाइम लेडीज थी, इतना बड़ा ये था उनका टीम। हाँ, ये यतिराज थे। तो ऐसे रामानुजाचार्य की सेवा करना बहुत रेयर था, लेकिन रामानुजाचार्य हर एक के लिए अवेलेबल थे। तो फिर ये जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी इच्छा है तो मैं इसकी पूर्ति करूंगा, तो रामानुजाचार्य ने फिर अगली लाइन उनको कही कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अभी एक व्रत लिया है अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने कहा बताइए क्या व्रत है। तो उन्होंने कहा कि मैं हर रोज जल पीता हूं, जो ब्राह्मण के चरण धुला हुआ जल है उसका मैं पान करता हूं, और मैं ऐसे ब्राह्मण का चरणों का जल पान करता हूं जिसका हृदय शुद्ध है, और कृष्ण की इतनी महान कृपा हो गई कि आप आ गए हो, आप यहाँ आए हो और आप क्या करिए, यदि आप ये सेवा करते हैं तो यही रियल वास्तव में सेवा आप मेरे प्रति कर रहे हो। अभी ब्राह्मण ना हो ना शोभन, ब्राह्मण ने बहुत सरलता से वो विनम्र था और उन्होंने रामानुजाचार्य की डायरेक्ट ऑर्डर को स्वीकार किया और उन्होंने इसका पालन करना शुरू किया। तो रामानुजाचार्य की दिनचर्या थी, वो दोपहर के समय जाते थे गोदा, कावेरी नदी है वहां, कावेरी के तट, कावेरी में अपने शिष्यों के साथ जाते थे स्नान करने के लिए। और स्नान करके जब आते थे तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले इस ब्राह्मण के चरणों को धोते थे, जल अपने सर में डालते थे, थोड़ा पान करते थे और फिर अपने बाकी कार्यों को लगते थे। तो ये हर रोज रामानुजाचार्य के ये सर्विस का भावना था। एक दिन किसी गृहस्थ वैष्णव ने रामानुजाचार्य को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया, तो श्रीपद रामानुजाचार्य गए वहां और बहुत सारे डिवोटीज आ गए, उनके तो उनका तो बहुत बड़ा कांग्रेगेशन होगा, सब आ गए उनके घर में, बहुत प्रसाद वगैरह लिया। फिर रामानुजाचार्य कथा करने लगे, सारे जो शिष्यगण है वो क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे, रामानुजाचार्य उनका उत्तर देते जा रहे थे। बहुत लेट हो गया, नाइट हो गई और रामानुजाचार्य वापस गए अपने आश्रम में, देखा कि सब सो रहे हैं लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो सो नहीं रहे, वो इंतजार कर रहे हैं, किसका, रामानुजाचार्य का। तो उन्होंने कहा अरे सब सो गए हैं, आप क्यों नहीं सोए, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैं कैसे किसी चीज को खा सकता हूं या किसी चीज को खाने के बारे में कैसे सोच सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक आपके प्रति सेवा नहीं की है, सेवा करने से पहले कैसे मैं भोजन ग्रहण कर सकता हूं। तो रामानुजाचार्य आश्चर्यचकित हो गए उनकी सेवा की भावना से। उन्होंने कहा कि वास्तव में तुम परफेक्ट सेवक हो कृष्ण के, और ये सेवा के प्रति इतने जो निष्ठा है उससे तुम भगवान की जो अनुकंपा है, कृपा है, तीव्रता से प्राप्त करोगे। और फिर रामानुजाचार्य ने तुरंत जल लिया उस मध्य रात्रि में और अपने शिष्यों के सहित उनके चरणों को धोया और उसका खुद पान किया और अपने जितने डिसाइपल्स थे उनको भी पिलाया। इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य एक महान आचार्य थे, आइडियल आचार्य थे, जो इस चीज को स्थापित करते हैं अपने संप्रदाय में। इतना ही नहीं बल्कि उनके जो शिष्यगण थे वो भी बहुत इस प्रिंसिपल को उन्होंने बहुत अधिक अपने हृदय में डाल दिया था। श्रीपद रामानुजाचार्य एक बार श्रीरंगम में सहस्र गीति, भगवान का गुणगान के स्तोत्राज हैं, उनका गान कर रहे थे। उन्होंने 3 बार अपने शिष्यों के समक्ष वो सहस्र गीति का उच्चारण किया और उसका उच्चारण करते करते उनके हृदय में ये भावना जागृत हुई कि मुझे श्री शैल जाना है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने कई सारे शिष्यों को अपने संग में ले लिया श्रीपद रामानुजाचार्य ने, और उनको लेकर साथ में कीर्तन कथा करते करते वो कई स्थानों में पहुंचे। एक विलेज, एक गांव आया, अष्ट सहस्र नाम का एक विलेज आया। रामानुजाचार्य को याद आया कि इस गांव में मेरे 2 गृहस्थ शिष्य रहते हैं, एक का नाम है यज्ञेश और दूसरे है वरदाचार्य। वरदाचार्य अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ रहते थे और यज्ञेश उसी गांव में, उसी टाउन में निवास करते थे। तो रामानुजाचार्य जब अपने शिष्यों के समेत एक सरोवर में गए, स्नान आदि किया और उन्होंने अपने 2 ब्रह्मचारी शिष्यों को भेजा कि आप जाओ यज्ञेश के वहां। यज्ञेश बहुत धनाढ्य शिष्य थे, उनके पास धन संपदा बहुत ही विपुल मात्रा में थी। तो जब ये 2 गए और इन्होंने कहा कि आप जाकर उनको बताओ कि रामानुजाचार्य आपके गुरु उनके सारे शिष्यों के समेत आ रहे हैं, आप उनकी प्रसाद आदि की व्यवस्था करो। तो ये बेचारे गए ब्रह्मचारी, बहुत लंबा वॉक करते हुए कई घंटे चल के उस गांव में, और यज्ञेश को बताया। यज्ञेश बहुत खुश हो गए कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। तो इतने खुश हो गए वो अरेंजमेंट करने लगे और बेचारे जो भक्त गए थे उनको एक ग्लास पानी भी नहीं पूछा और ये वैसे वापस चले आए। तो रामानुजाचार्य ने पूछा आप बताओ कैसे रहा आपका विजिट वहां। तो उन्होंने जो चीजें हुई थी उन्होंने कहा कि यज्ञेश तो इस प्रकार से इतने मग्न हो गए बाकी कार्यों में कि उन्होंने हमें एक ग्लास पानी भी नहीं पूछा ना पानी दिया और हम वैसे आए हैं भूखे हारे। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि हम दूसरे शिष्य के घर जाएंगे प्रसाद के लिए, वहां नहीं जाएंगे। रामानुजाचार्य उन्होंने कहा मेरा दूसरा शिष्य है वरदाचार्य, उनकी पत्नी लक्ष्मी है। बल्कि रामानुजाचार्य ऐसे हैं शिष्य के घर गए जिनको एक समय का भोजन भी प्राप्त करना दुर्लभ था। जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के समेत पहुंचे तो वहां जो वरदाचार्य हैं जो ब्राह्मण थे वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकल पड़े थे। उनके पास एक वस्त्र हुआ करता था और उनकी पत्नी के पास एक ही साड़ी, उन्होंने वो साड़ी भिगा के सुखाने डाले थे, सूखी नहीं थी। रामानुजाचार्य गए, उन्होंने नॉक किया दरवाजा और नॉक करते तो उन्होंने कहा कि मैं उस अवस्था में नहीं हूँ जिस अवस्था में आपको रिसीव करो। रामानुजाचार्य समझ गए, उन्होंने अपने जो ऊपरी वस्त्र है चादर अंदर डाले और उन्होंने उसको धारण किया और अपने गुरु को रिसीव किया लक्ष्मी ने। तो वो जब गए प्रणाम आदि किया, उनके शिष्यगण वहां बैठे, रामानुजाचार्य बैठे, तो वो सोचने लगी कि मैं कैसे इनकी सेवा करूं, हमारे पास जल के अलावा देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ना भोजन है ना ऐसी कोई व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा सर्वोत्कृष्ट धर्म है श्री गुरु की सेवा करना। तो वो सोचने लगे क्योंकि उस गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था और बहुत कामुक प्रवृत्ति का था और ये जो लक्ष्मी है ये बहुत ही सौंदर्यवान स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री, और वो जो व्यक्ति है कई स्त्री मैसेंजर को बेचकर इसकी चाह करता था लक्ष्मी की। ये पतिव्रता नारी है, ये हमेशा रिफ्यूज करती थी उसके संग के लिए, कई गिफ्ट्स बेचता था, हीरे जवाहरात आदि, लेकिन ये बहुत डेडिकेटेड डिवोटी थी। तो लेकिन उसके उसको लगा कि अभी मैं अपने गुरु की या इन वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाऊंगी, उसको लगा कि मैं उस व्यक्ति के पास जाती हूँ और उससे सारा सामान आदि लाती हूँ। तो ये गई पिछले दरवाजे से गए तो उस व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे इन इन वस्तुओं की आवश्यकता है, आप मुझे प्रोवाइड करो, मैं शाम के समय में आपके पास आऊंगी। तो उस व्यक्ति तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है। तो वो उसने सारा सामान दिया, वो उसने लाया, लक्ष्मी ने कुकिंग आदि की, रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों को अच्छी तरह से सर्व किया और सर्व करके सारे वैष्णवगण बैठे थे। उसी समय लक्ष्मी के पति आते हैं वरदाचार्य, और वरदाचार्य जैसे आए तो उन्होंने देखा कि सारे उनके श्री गुरु आए हैं, प्रणाम आदि किया और देखा कि सारे प्रसाद वगैरह ग्रहण करके बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो अंदर लक्ष्मी से जाके पूछते हैं कि ये सारी व्यवस्था कहाँ से हो गई, कैसे की। तो उन्होंने अपना सर नीचे झुकाया और अपने पति को जो भी चीज है वो कह डाले। तो वरदाचार्य नाचने लगे, उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में आश्रित पतिव्रता नारी का एक दिव्य लक्षण प्रकट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि असली चैस्टिटी क्या है, कृष्ण की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई रिलीजियस प्रिंसिपल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो भाग्यवान व्यक्ति हूं कि आप मुझे आप जैसी पत्नी मिली जो इतना फेथफुल है गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए, इतनी निष्ठावान है। तो बहुत आनंदित हो रहे थे, लेकिन रामानुजाचार्य को पता था कि इनके पास एक समय खाने का व्यवस्था नहीं है, इन्होंने अरेंज कैसे किया। तो जब ये सब हुआ तो वो दोनों श्रीपद रामानुजाचार्य से मिलते हैं। रामानुजाचार्य उनसे इंक्वायरी करते कि आप बताओ कैसे हो, कहां से अरेंज किया। तो इन दोनों ने बोला, तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य ने कहा कि हे वरदराज वरदाचार्य और लक्ष्मी, आप क्या करो, मेरा जो ये उच्चिष्ट महा प्रसाद है ये लेकर उस व्यक्ति के घर जाओ तुम दोनों और उसको ये प्रसाद दे दो। ये उस महा प्रसाद को लेकर, रामानुजाचार्य के उच्चिष्ट को लेकर वो गए, क्योंकि जब ये गए तो उस व्यक्ति का तो बहुत बड़ा महल था, रावण ये जो वरदाचार्य हैं वो बाहर के रूम में रहे और उनकी पत्नी वो प्रसाद का प्लेट लेकर अंदर चले गई, उस व्यक्ति ने स्वीकारा, खाते जा रहा था, जैसे खा लिया तो उसका हृदय इतना विमल हो गया कि वो सोचने लगा कि मैं कितना घृणित व्यक्ति हूं, नीच व्यक्ति हूं, आप तो दमयंती के समान है, पतिव्रता, दमयंती बहुत श्रेष्ठ पतिव्रता, श्री महाभारत में वर्णन आता है नल और दमयंती का, तो दमयंती के समान हो, दमयंती का स्पर्श करने के लिए एक शिकारी ने स्पर्श किया, उस स्पर्श करने मात्र से राख में परिवर्तित हो गया, चल गया था, तो मैं तो ऐसी चीज से बच गया हूं और बहुत अधिक क्षमा याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे वो जो व्यक्ति है धनाढ्य व्यक्ति, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। ये दोनों उस व्यक्ति को लेकर आते हैं, रामानुजाचार्य बहुत खुश होते हैं, अपना जो चरण है उस व्यक्ति के सर में रखते हैं और उसको दीक्षा दे देते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि श्रीपद रामानुजाचार्य में ही ये सर्विस की भावना नहीं थी, बल्कि उनके जो भक्त हैं उनके अंदर भी बहुत तीव्रता से ये जो प्रिंसिपल है वैष्णव सेवा का, उनके शिष्यों ने भी अपने जीवन में धारण किया था। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन साधने का महाबल, कि भक्त के चरणों का जल, भक्तों का जो उच्चिष्ट है और भक्तों के चरणों की जो रज है, ये भगवत भक्ति में तीन हमें बल देते हैं। हाँ, यह रामानुजाचार्य के उच्चिष्ट को हम देखते हैं कि कितना प्रभाव रामानुजाचार्य का उच्चिष्ट वो पापी या फिर कामुक व्यक्ति ग्रहण करता है, फिर भी उसमें सारे भगवत प्रेम के भाव या भगवत सेवा के जो भावना है वो जागृत होती है। श्रीरंगम में, श्रीरंगम मंदिर के अंदर एक चंद्र सरोवर है, चंद्र पुष्करणी कहते हैं उसको, तो वहां रामानुजाचार्य एक बार महाप्रसाद पाकर गए हाथ धोने के लिए, तो हाथ धोया तो उसमें जो मछलियां थी, हाँ, और मछलियों ने जब उनके महा महा उच्चिष्ट को स्वीकार किया तो वैकुंठ वासियों का रूप धारण किया था। तो इतना महाबल जो भगवान के भक्त हैं उनके इन तीन चीजों में होता है, धूलि में, पदजल में और उनके अवशेष में। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु भी इस चीज पर जोर देते हैं कि वास्तव में भगवत भजन बहुत सरल हो जाता है जब हम अपने आप को सरल रखते हुए कपटता के भावना को छोड़कर वैष्णव की सेवा में लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक ब्रह्मचारी था, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में एक साल के लिए रात्रि में सारे दरवाजे बोल्ट बंद करके हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन करते थे तो कई सारे ब्राह्मण थे, कई सारे लोग थे, वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को देखना चाहते थे, नृत्य आदि को, उनके भक्तों के संग में। कुछ लोग तो दरवाजे के होल से देखते थे और बिल्कुल एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि वहां एंट्री अलाउड किसको था, जो शुद्ध भक्त है। हाँ, कितना कठिन है क्वालिफिकेशन। हाँ, तो ज्यादातर लोग बाहर ही रहते थे। तो महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे पूरे रात रात, तो हजारों जो लोग हैं वो इच्छा करते थे कि हम भी उस संकीर्तन में भाग ले, हम भी श्री चैतन्य देव के उस नृत्य गान आदि को देखे। तो एक ब्रह्मचारी था, बड़ा तपस्वी था, सरल था, और वो बड़ा फल फूल खाता था, दूध पी के रहता था, ग्रेन्स आदि को हाथ नहीं लगाता था, तपस्वी। तो इसने श्रीवास पंडित से कहा कि देखो आप कृपा करो, मुझे ना थोड़ा अलाव करो उस संकीर्तन को देखने के लिए। श्रीवास पंडित ने कहा, मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुमने जब से जन्म लिया ना तब से जानता हूँ, तुम तो बड़े वैरागी हो, तपस्वी हो, विरक्त हो, सरल हो, साधु वृत्ति के हो। देखो ऑफिशियली तो अलाउड नहीं है, लेकिन तुम आ सकते हो। और वो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो पहचान जाते हैं हाँ, कोई नॉन डिवोटीज एंट्री करता है तो फिर भी मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम क्या करो, आकर कीर्तन में बैठ जाओ और छुप जाओ एक कोने में। तो पहले भी इंसिडेंट हुआ था, श्रीवास पंडित ने अपनी सास को रखा था अंदर हाँ, उसको ढूंढ के महाप्रभु ने उसके बाल पकड़ के बाहर भेज रहे और डिवोटी नहीं थी, फेथ नहीं था हाँ। तो फिर जब इसको रखा, ये बिल्कुल छुप कर ये ब्रह्मचारी देख रहा था नृत्य कीर्तन आदि, चैतन्य महाप्रभु आए, उनके संगी आए, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु हाथ में हाथ पकड़कर गौर नृत्य करते जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कूद कूद कर नाच रहे थे। फिर महाप्रभु ने थोड़ा देखा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उन्होंने सोचा कि आज मुझे कुछ आनंद नहीं महसूस हो रहा है, श्रीवास यहाँ कोई अभक्त की एंट्री तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु। फिर बाद में कहा नहीं 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 जरूर है हाँ। तो महाप्रभु ने जाना, इन्होंने कहा एक ना ब्रह्मचारी है, वो बड़ा फल फूल खाता है, ग्रेन सादे नहीं खाता, पूरा जीवन तपस्वी है, दूध पी के रहता है, और मैंने उसको ना शरण दी है। तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, महाप्रभु ने कहा मोर नृत्य देखिते वुहार कौन शक्ति, पय पान करिले की मोरे मोते हय भक्ति। क्या इस व्यक्ति में योग्यता है, मोर नृत्य देखिते वुहार कौन शक्ति, इस व्यक्ति में क्या शक्ति है मेरा नृत्य देखने की हा? कि पय पान करिले कि मोते हय भक्ति। कोई व्यक्ति केवल दूध पीकर रहता है, दूध पीने से क्या मेरे प्रति भक्ति होने लगेगी क्या। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डांटा, उन्होंने कहा प्रभुपाद होते तो कहते रास्कल। प्रभुपाद कहते चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस रास्कल को बाहर निकालो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डांटा उसमें, मैं भूल गया बंगाली वर्ड, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसको निकालो बाहर। बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ये सब योग्यता ही नहीं है मुझे जानने के लिए, गजेंद्र में क्या योग्यता थी, वो एक पशु था, वानर जो कपि हनुमान है उन्होंने मुझे प्राप्त किया है, लेकिन क्या है मेन योग्यता भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने हाँ उनको डांटा बाहर, ये बेचारा बिल्कुल विनम्र हो गया, उन्होंने कहा वो स्वामी है मैं तो उनका दास हूं, और सोचते हुए बाहर निकल गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर बाद में रोकाया उनको, देखा कि सिंसियर है, सरल है, हम्बल है। फिर महाप्रभु ने बुला के अपने चरण रखे और उनको कहा कि तुम सब जो भगवत भक्ति आदि के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु के इस लीला से हम सुनते हैं देखते हैं कि बाकी कोई योग्यता नहीं है भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इससे विपरीत एक चीज को देखा, जब चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास पंडित के घर में अभिषेक हो रहा था तो उस समय अलग अलग जो डिवोटीज हैं सर्वेंट आदि जो श्रीवास पंडित के घर के वो भी लाकर पानी देते थे, लेकिन उसमें एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था दुखी। जल अनेक भाग्यवती दुखी नाम आपने ठाकुर देखी भले आन आन। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा, रोज में देख रहा हूं यहां सारे भक्तगण हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज एक स्त्री रोज जल के घड़े बहुत लाती है, भर भर के लाती है और लाके लाइन में रखती है, सारे वैष्णवाज उसका यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं। फिर महाप्रभु ने एक दिन श्रीवास पंडित से पूछा, श्रीवास ये जल लाने का सेवा कौन करता है, भगवान छोटी से छोटी सेवा के लिए भूलते नहीं है, हम किसी की बड़ी सेवा को याद रखते हैं, कोई हमारे ऊपर हमारे हमसे संबंधित परोपकार उपकार करता है तो हम बड़ी बड़ी चीजों को याद रखते हैं, लेकिन भगवान का गुण क्या है छोटी से छोटी चीज को याद रखते हैं, बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी से छोटी सेवा से। भगवान राम की लीला में हम देखते हैं गिलहरी का है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को पूछा, श्रीवास ये जल लाता कौन है, उन्होंने कहा एक दुखी। दुखी क्या करती है, जल लेके आती है। और महाप्रभु ने कहा आपने ठाकुर देखी भले आना, जब उस महाप्रभु ने देखा उन्होंने कहा, उसको देखा जल ला रहे थे, उसने कहा लाओ लाओ और जल लाओ। अपने ठाकुर तार भक्ति योग देखी, दुखी नाम गुचाइया थुई लेना सुखी। उन्होंने क्या किया, अरे जो वैष्णव की सेवा कर रहा है वो कैसे दुखी हो सकता है, हाँ इसका नाम आज से क्या होगा, सुखी। तो महाप्रभु ने उनका नाम सुखी कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु या ये कृष्ण का गुण है, जो भी व्यक्ति भगवत भक्तों की सेवा में अपने आप को नियुक्त करता है, इस सिद्धांत को स्वीकार करता है, वैष्णव सेवा का व्रत, महाप्रभु बहुत अधिक तुष्ट होते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर से बाहर निकल रहे थे या आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक दर्जी को देखा जो सिलाई करता है। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था ये दर्जी किसके घर के कपड़े सिलाता है, श्रीवास पंडित के, महाप्रभु, और मुस्लिम दर्जी था। महाप्रभु इतने अधिक आनंदित हुए कि ये तो नित्य रूप से श्रीवास पंडित, उनके जो चार भाई है, इतना बड़ा फैमिली है, सबकी सेवा में लगा हुआ है, और सेवा क्या है, कपड़े सिलाना। महाप्रभु ने कहा अरे वैष्णव सेवा में लगा है, अच्छा। तो जी चैतन्य वो निकल ही रहे थे, अभी इनका तो गौर वर्ण रूप है, तो इन्होंने ना अपना त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वेणु धारण करने वाले रूप को दिखाया, तो मुस्लिम देखकर कहने लगा मैंने देखा। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कृपा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, चैतन्य महाप्रभु श्रीमद रामानुजाचार्य से बहुत अधिक प्रीति रखते थे, और रामानुजाचार्य की इन दोनों सिद्धांत को अपने संप्रदाय में उन्होंने लागू किया। एक है अनन्य भावना से भगवत के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, और दूसरा है भक्त जन सेवा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी उन्हीं चीजों को आगे प्रेजेंट किया है। चैतन्य महाप्रभु के पास जब एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा के समय नवदीप से कई सारे वैष्णव फैमिली जाते थे, 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे और फिर वापस नवदीप के लिए जाया करते थे बहुत दुखी होकर, और जाने से पहले मिलते थे और पूछते थे। हाँ, तो उनमें से एक प्रमुख थे सत्यराज खान, जो एक वैष्णव थे। तो सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं और वो कहते हैं, गृहस्थ विषय आमी के मोर साधने श्रीमुख करे न आज्ञा निवेदि चरणे। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने पूछा, गृहस्थ विषय आमी की मोर साधने, मैं तो गृहस्थ व्यक्ति हूँ, विषयी व्यक्ति हूँ, और मेरे लिए क्या साधन उचित है। श्रीमुख करे न आज्ञा निवेदि चरणे, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने श्रीमुख से कुछ आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहिए, हम तो वापस जा रहे, आपका संग तो हमने 4 महीने कर लिया, अभी वापस नवदीप जा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सत्यराज खान को कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको करना ही है तो इन 2 चीजों को करो, और 2 चीजों को करने मात्र से शीघ्रता से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। पहला महाप्रभु ने कहा वैष्णव सेवा, और दूसरा है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं शिक्षाओं को अपने भक्तों को दिया है। और जगन्नाथपुरी में वर्णन आता है कि जब भी, ऐसे नहीं कि 1 साल में ये शिक्षा दी, हर साल बंगाल से वैष्णवाज आते थे और सेम प्रश्न पूछते थे, बताइए हम जा रहे हैं क्या करें, महाप्रभु सेम चीज को रिपीट करते थे, फिर हर साल वैष्णव का अगला स्तर बताते थे, इस तरह के वैष्णव की सेवा करो, इस तरह के वैष्णव की सेवा करो। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें बहुत प्रमुख हैं, और ऐसे रामानुजाचार्य बहुत अजात शत्रु की भावना है, जो वैष्णव है अजात, क्योंकि वैष्णव के गुणों का वर्णन करते हुए देवहूति को कपिल देव कहते हैं, उन्होंने कहा, देवहूति ने कहा कि मैं सदैव भौतिक जीवन में गिरी हूँ, विषयासक्ति मेरे हृदय में भरी पड़ी है, आप बताओ कैसे इससे मुक्त हुआ जाए। उन्होंने कहा महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्त है, योशत संगी संघर्ष। उन्होंने कहा महत सेवा, महत व्यक्तियों की सेवा करने से मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के या आध्यात्मिक जगत के जो द्वार हैं वो ओपन हो जाते हैं। उन्होंने कहा फिर कौन है वो महत व्यक्ति? हम महत मीन्स महात्मा, जिसको भगवान ने गीता में महात्मा कहा गया है महत व्यक्ति को, और उसी को साधु शब्द यूज किया है भागवतम में। तो चलिए उन्होंने कहा वो साधु कौन है? तो कपिल देव ने कहा तितिक्ष्वाकारुणिका सूरद सर्वदेना अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण। कोई महत तभी हो सकता है या महात्मा तभी हो सकता है जब उसके अंदर ये जो लक्षण है, आभूषण है, ये जो क्वालिटीज है वो साधु के लिए क्या है? आभूषण है। साधु का सौंदर्य या भक्त का सौंदर्य इन गुणों से बढ़ने लगता है, वो शोभायमान होता है। तो उनमें एक गुण है अजात शत्रवा। तो ये जो रामानुजाचार्य इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी बहुत विनम्र थे, विनम्रता की खान थे। रामानुजाचार्य का एक रूल था, शाम के समय में श्रीरंगम में रंगनाथ का दर्शन करने जाते थे, भगवान के कमलनयन को दर्शन करते हुए निकलते समय वो जरूर रोज चरणामृत का पान करते थे। तो वहां का जो हेड पुजारी था श्रीरंगम का, उसने लगा कि ये जो यतिराज है, रामानुज है, इनका फेम इतना क्यों बढ़ रहा है? मैं यहाँ का हेड हूँ, मेरा इतना फेम नहीं है, इनका इतना आदर सम्मान ग्लोरिफिकेशन इनविटेशन ये सब क्यों इनके साथ हो रहा है, मेरे साथ होना चाहिए। इन्होंने सोचा नहीं, ये मेरे बीच में काटा है, इनको हटाए तो ठीक हो सकता है। और हटाना मीन्स क्या? मारना, ये भावना रहती है ना, हटाना मीन्स मर्डर करना, मार डालना। तो साधु समाज में मर्डर शब्द तो नहीं यूज करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हे यतिराज, आज बहुत पावन दिन है, आप मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो ये अभी इनको इनवाइट किया प्रसाद के लिए, अभी सन्यासी का कर्तव्य है जाके गृहस्थ के घर में जाकर प्रसादम आदि ग्रहण करें। तो ये जब गए, ये पहले पहुंच गए हेड पुजारी घर में, पत्नी को बोला जो यतिराज है ना रामानुज वो आने वाले हैं, अच्छा फिस्ट बनाओ और इतना जहर डालो उसमें कि खाते ही मर जाए। पत्नी भी फॉलोवर थी, फुल्ली सरेंडर सोल, उसने कहा जरूर, इतना अच्छा सेवा का मौका मिला है। तो फिर उसने बनाया प्रसाद, तो वैरायटीज ऑफ प्रसाद बनाया, लेकिन जहर भी एक ही वैरायटी का था, वो डाला। और जब रामानुज आए, दोपहर को आए उनके घर, तो रामानुजाचार्य बैठे प्रसाद लेने के लिए। वो जो माताजी थी उनके अंदर स्त्रियों का हृदय थोड़ा सॉफ्ट होता है कि नहीं, तो उनके अंदर वो सॉफ्टनेस आ गया और वो ना उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने देखा अरे कितने सरल बुद्धि के वैष्णव हैं, और मैं मेरा पति का दिमाग खराब हो गया है उनके दिमाग के कारण, मैं क्या कर रही हूँ, इतने महान वैष्णव को जहर खिलाकर मारने जा रहे। तो उन्होंने कहा हे श्रीपाद रामानुजा, मुझे क्षमा कीजिए, आप इस भोजन को स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें 10 लोग मारने की इतनी शक्ति वाला जहर डाला है, आप इसको मत स्वीकार कीजिए, आप चले जाइए बिना खाए। तो रामानुजाचार्य शॉक हुए कि रंगनाथ का जो हेड प्रिस्ट है उसकी ये भावना, इन्होंने सोचा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, कोई व्यक्ति मुझसे इतना द्वेष क्यों रख रहा है, उसका गलती नहीं है, गलती मेरे अंदर अवगुण है, जिनके कारण इस दूसरे उस व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति ये भावना आई है। रामानुजाचार्य ने इन्हें सोचा कि अरे अपने आप को हेड प्रिस्ट कहलाता है, रोज मंगल आरती पूजा करता है, अभिषेक करता है, और मेरे प्रति इतना बुरा भावना, विष ठीक है बाकी कुछ कर लेता, मार ही डालने में लगा है, ऐसे नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने कहा कि वास्तव में मुझ में कोई कमी है, मेरे अवगुणों के कारण, क्या है वो चीज। तो रामानुजाचार्य घर जाते हैं, वापस जाते हैं, तो उनके आश्रम में उनको प्रसाद आदि मिलता है, कोई डिवोटी लेके आए थे उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और उस शाम के समय फिर ये आते हैं, देखते पत्नी को, हमारा मिशन सफल हुआ कि नहीं हुआ, घर आके देखा कि मिशन फेल, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते इस स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर उन्होंने कहा ये नहीं, उन्होंने दूसरी ट्रिक अपनाता हूं। उन्होंने सोचा ये रोज शाम को आते हैं, रंगनाथ का दर्शन करते हैं और चरणामृत पीते हैं, अभी चरणामृत में ही विष डाल देता हूँ। जैसे प्रभुपाद लॉस एंजलिस में जब चरणामृत पीने गए तो बहुत सारा नमक डाल दिया था एक माता जी ने, मतलब उस समय बहुत कुछ घटनाएं हुई थी, प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए थे, उस स्थान को छोड़ने में लगे थे लॉस एंजलिस को, हाँ वो जो 6 महीने का पीरियड था। तो एक प्रभुपाद जब गए गोविंदामदि पुरुषम करके चरणामृत के लिए, तो एक माता जी की सेवा थी, चरणामृत डाला पिया, इतना नमक, प्रभुपाद बोले ने, प्रभुपाद ने जब भागवतम क्लास शुरू की तब उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने कहा डाटा कि कौन है जिसने ये शरारत किए हैं। एक माता जी खड़ी होगी, प्रभुपाद मैंने प्रभुपाद ने देखा कि उसी दिन उनका जो फ्लोट फोटो है व्यास आसन में सफाई करते हुए उल्टा रखा गया था, ऐसी कई घटनाएं हुई। प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब है यहाँ के जो भक्त है वो अटेंटिव नहीं है सेवा में, कॉन्शियस नहीं है। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ रामानुजाचार्य जब चरणामृत पीने गए और ये हेड प्रिस्ट दे रहा है उनको चरणामृत, आज तो ज्यादा ही दे रहा था, रामानुजाचार्य ने लिया और रामानुजाचार्य चरणामृत को लेकर उनको भगवान, चरणामृत मीन्स भगवान के चरण कमलों को धुला हुआ जल, रामानुजाचार्य ने उसका पान किया और वो जानते थे इसमें क्या है, विष है, लेकिन उनको उन्होंने पी लिया। पी के रंगनाथ के सामने गए और रंगनाथ को कहा कि हे कृष्ण, रंगनाथ आपके चरणामृत में कितनी पावर है, शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति केवल आपके चरणामृत, आपके चरणों को धुला हुए जल का पान करता है तो वो आपके धाम जाने का पात्र हो जाता है, आपका प्रेमी बन जाता है। तो बहुत सारी स्तुति की और बिना कुछ कंप्लेंट किए हुए रंगनाथ को प्रणाम करके रावणाचार्य वापस अपने आश्रम चले जाते हैं। और ये ब्राह्मण अभी हेड प्रेस्ट हेड पुजारी सोच रहा था कि आज ठीक है, अभी कल इनका मुंह नहीं दिखेगा मुझे, कल सीधा अंतिम यात्रा नजर आएगी। तो लेकिन दूसरे दिन ही आया तो देखा कि, और जाते समय श्रीपद रामानुजाचार्य टेम्पल से जब बाहर निकले थे तो उनके अंदर अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे थे, अभी इसको लगा ये विष का प्रभाव काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानते। भगवान क्या कहते गीता में, नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो भी चरणामृत पीकर भक्त का नाश हो जाए तो भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देंगे। तो फिर जो रावणाचार्य गए दूसरे दिन आए और आके श्रीरंगम के सामने समाधि की मुद्रा में बैठे और भगवान का स्तुति कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, स्तुति कर रहे थे और बिल्कुल मग्न हो गए समाधि में, शांत हो गए। बहुत सारे डिवोटीज इकट्ठा हो गए थे, दूर से देखा इतना क्या भीड़ है, ये पुजारी भी आ गया था मंदिर में, इतना क्या भीड़ हो रहा है वहां। तो उन्होंने देखा भीड़, तो उन्होंने देखा कौन बैठा है बीच में, रामानुजाचार्य, सब उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका ग्लोरीज गा रहे हैं। फिर इनका हृदय पिघलने लगा, ये गया सारे क्राउड को साइड में करते हुए रामानुजाचार्य के चरणों में जाकर गिरता है और वो कहता है कि मेरे जैसा वैष्णव अपराधी कोई नहीं है और मैं तो वास्तव में शरीर धारण करने के योग्य नहीं हूं, मुझे तो क्या करना चाहिए, अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। और ये कहते हुए वो जोर जोर से अपना सर जमीन में पटकने लगे रावणाचार्य के चरणों में। रावणाचार्य की आंखें बंद थी, उन्होंने खोली और उनके सर को पकड़ा, बिल्कुल ब्लड ब्लड हो गया था वहां। रावणाचार्य ने कहा नहीं, हाँ ये उचित नहीं है। तो फिर इस प्रकार से रावणाचार्य, अब थोड़ा नजदीक बैठे उसके, रामानुजाचार्य उस जो हेड प्रिस्ट थे उनका उद्धार करते हैं और वो भी महान वैष्णव बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानुजाचार्य का जो स्थान है श्रीरंगम में, चैतन्य महाप्रभु तीन ही जगहों में ज्यादा रहे, नवद्वीप में, जगन्नाथपुरी में, फिर वृंदावन में, और 4 महीने कंटिन्यू उन्होंने निवास किया कहा, श्रीरंगम में। तो रामानुजाचार्य ने शरीर त्यागा, उनकी आखिरी शिक्षाएं थी उनमें से जब उन्होंने अपने डिसाइपल्स को फाइनल शिक्षाएं दी तो उनमें सबसे बड़ी पहली लाइन थी वैष्णव सेवा। आप यदि सफलता चाहते हो भगवत प्राप्ति में तो उनके शिष्यों को बोला कि आप वैष्णव सेवा में सर्वप्रथम लगो। और ये कहते हुए उन्होंने अपने जो शिष्य हैं, उनके एक शिष्य थे गोविंद, उनके गोद में आपने अपना सर रखा और आंध्रपूर्णा उनके जो दूसरे शिष्य थे उनके गोद में अपने चरण रखे और अपने आध्यात्मिक गुरु के जो पादुकाएं थी खड़ाव थी उनको अपने आंखों के सामने रखते हुए इस जगत से उन्होंने प्रयाण किया, इस जगत को उन्होंने छोड़ा। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने इस जगत को छोड़ा था। और वास्तव में हम सोचते हैं कि धाम में शरीर त्यागूंगा, यहाँ शरीर त्यागूंगा, लेकिन इससे बढ़कर धाम नहीं है। भक्तों का जो आश्रय है गोद है या चरण कमल है, क्योंकि भगवान कहते हैं और भक्तिनो ठाकुर कहते हैं जय स्थाने वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। जिस स्थान में भक्तों भक्त है वैष्णवगण है वही स्थान वृंदावन है, धाम है, तीर्थ है, सारा सामर्थ्य रखता है। हाँ, तो यही अभिलाषा एक भक्त की होनी चाहिए कि कैसे मुझे सदैव भक्तों के संग में निवास मिले और सेवा करने का मुझे लाभ मिले ताकि मैं अपना ये जो जीवन है वो सफल कर सकूं। यही इस प्राप्ति की, इस चीज की प्राप्ति की अभिलाषा एक भक्त को रखनी चाहिए। तो आज भी आप श्रीरंगम जाते हो तो रामानुजाचार्य का शरीर है लगभग कितने साल, 128 साल वो जीवित रहे, 120 से 28, लगभग अभी 1100 साल हो रहे हैं, 1100 या 1100, आज भी उनका शरीर इस अवस्था में है। जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनको समाधि दे रहे थे तो लेकिन समाधि से अंदर से ऊपर आ गए फिर से हाँ के बैठे। तो वो तीन स्थानों में रामानुजाचार्य हैं, उनके विग्रह उनसे अभिन्न है। दो स्थानों में तो उनके विग्रह हैं लेकिन एक स्थान में उनको वो स्वयं है अपने शरीर से अभी तक। तो एक स्थान है मेल्लकोटे, मेल्लकोटे में जिन्होंने काफी समय गुजारा था वहां उन्होंने श्री भाष्य आदि को लिखा। श्री संप्रदाय में चार मंडल होते हैं, चार उनके प्रमुख प्लेसेस हैं, एक है कांचीपुरम, दूसरा है तिरुपति, तीसरा है मेल्लकोटे और चौथा है श्रीरंगम। तो इन चार स्थानों में अलग अलग चीज है। जैसे हम कहते ना जगन्नाथपुरी में क्या है प्रसाद, और नवदीप में क्या है कीर्तनम, और ब्रज में है ब्रज धूलिया आदि। तो श्री संप्रदाय के ये चार प्लेसेस है, एक त्याग मंडल, विद्या मंडल, ऐसे चार मंडल है, उनकी स्पेसिफिक डिटेल डेफिनेशन है। तो श्रीपद रामानुजाचार्य का पहला, उन्होंने जब देखा उनके शिष्यों ने कि वो शरीर त्यागने वाले ही जल्द ही उनका वपू संग हमें नहीं मिलेगा, तो सबने निवेदन किया कि आपका संग हम नहीं चाहते, आप हमसे विलग हो जाए। उन्होंने कहा मेरा विग्रह बनाओ, तो उनके सामने उनका विग्रह बनाया गया। उस विग्रह को उन्होंने आलिंगन किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को इस विग्रह में डाल दिया है, आपको कभी भी मेरा विरह शोक आदि अनुभव होगा आप इस विग्रह के सामने आओ। और वह इस समय बहुत पावरफुल है। और दूसरा विग्रह बनाया गया उनका जो जन्म स्थान है भूतपुरी या श्री पेरुम्बुदूर में रामानुजाचार्य का। और रामानुजाचार्य का जो विग्रह बनाया जा रहा था और जो विग्रह बनाने वाले को क्या कहते हैं शिल्पी है स्थापत्य, वो जब आंखें बना रहा था, आंखें ओपन कर रहा था, तो रामानुजाचार्य श्रीरंगम में लेक्चर दे रहे थे अपने शिष्यों को। लेक्चर देते देते उनकी आंखों से ब्लड आने लगा। उन्होंने पूछा गुरुदेव क्या, उन्होंने कहा वो लोग आई ओपन कर रहे हैं वहां मेरे विग्रह की श्री पेरुम्बुदूर में। तो इन विग्रहों के अलग अलग स्पेसिफिक नाम है और इन विग्रहों का कोई स्पेसिफिक आश्रय ग्रहण करता है, प्रेयर करता है, तो भगवान का वो प्रिय बन जाता है। और तीसरा जो स्वयं रूप में है श्रीरंगम में रामानुज सन्निधि कहते उसे, श्रीपद रामानुजाचार्य का वो विग्रह आज भी है, उनके शरीर पर लेप लगाया हुआ है, उनके नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, और अब जाकर उनका दर्शन कर सकते हो और अनुभव कर सकते हो ऐसे पावरफुल आचार्य को जो लक्ष्मण या शेष से अभिन्न है। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य का स्मरण करना चाहिए, चैतन्य देव के बहुत अधिक प्रिय है। और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो दो गुण है वो मेरे अंदर आ जाएं। एक है अनन्य भावना से मैं भगवान कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का अपने जीवन में आश्रय ग्रहण कर सकूं, और सदैव अंतिम समय तक भक्तों के संग में रहकर भगवत भक्तों की सेवा में लगे रहो। और इसी चीज को नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे हा यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर डर नहीं रहे हैं कि मुझे जन्म लेना पड़ेगा, वो कहते जन्म जन्म लेने पड़ने दो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन क्या तांदेर चरण सेवी, तांदेर मीन्स पूर्ववर्ती आचार्य, उनके प्रति मेरा फेथ स्ट्रांग हो जाए और उनकी सेवा में मैं सदैव लगा रहूं, और मुझे निवास कहां मिले, भक्त सनिवास, यही मेरी अभिलाषा है। क्योंकि भक्तों के संग में वास से हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अधिक सरल हो जाता है, और प्रभुपाद ने हमें भक्त का संग वास प्रदान किया है अपने आंदोलन के द्वारा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे।